الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो ये वाली क्लास यानी बुध की जो पहली क्लास होती है दीन एसेंशियल्स फॉर वेमेन के प्रोग्राम के तहत, तो उसमें हम अखलाक व आदात नबविया यानी शमाइल शमाइल नबविया पढ़ते हैं, जो कि तसहील बहश्ती जेवर किताब से पढ़ते हैं, जो कि दरअसल हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी बहश्ती जेवर के नाम से, और उसको फिर आज के जो हमारा एक मदरसा है जामत रशीद के नाम से पाकिस्तान में, तो उन्होंने फिर उसकी तसहील जो है वो लिखी है, यानी उसको जरा कॉन्टेम्प्रेरी हालात हाजरा के मसाइल वगैरह उसके अंदर दाखिल करके उसकी एक तसहील बनाई है। तो उससे हम ये अखलाक व आदात नबविया अखलाक व आदात नबविया पढ़ते हैं, और हमारा पढ़ने का मकसद क्या कि हम नबी अलैहिस्सलाम का ज़्यादा से ज़्यादा तज़किरा करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानें, ज़ाहिरी आदात व अखलाक के बारे में भी जानें, बातनी अखलाक व आदात के बारे में भी जानें, और इससे हमें उम्मीद है कि हमारे अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मजीद बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि ज़ात के तस्करे से उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है। इसमें हम जहाँ पढ़ रहे थे पेज नंबर 127 127 पर थे, और पॉइंट नंबर 33 हमने पढ़ना था। ठीक है, 33। तो इसमें फरमाते हैं कि इब्न सन्नी और तिब्रानी रहमहुल्लाह ताला ने हज़रत उस्मान इब्ने अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि जब शिमाली हवा चलती या शुमाली हवा चलती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्र मा अरसलत फीहा, यानी या अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ उस चीज के शर से कि जिसको आपने इस हवा में भेजा है। ठीक है, मैं पनाह मांगता हूँ उस चीज के शर से जिसको आपने इस हवा में भेजा है, अरसल तफीहा इसमें भेजा है। तो शुमाली हवा जो है वो उस इलाके के अंदर कोई यानी जिसमें होता है ना, जैसे बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं पाकिस्तान में, हम बचपन से जो है वो कराची में सुनते आ रहे कि क्वेटा की हवाएं चल रही हैं, तो जी जब बहुत ही यख पस्ता हवाएं चलनी शुरू हो जाती थी, बहुत ठंडी हवाएं, तो उसको कहते हैं जी क्वेटा की हवाएं चल रही हैं, यानी उस तरफ से जो हवाएं आती हैं ना, तो वो बड़ी सर्दी अपने साथ लेकर के आती हैं। तो उसी तरीके से हर इलाके के अंदर कोई ना कोई ऐसी डायरेक्शन होती है विंड्स की कि जिससे जो है वो गर्मी आती है, कहीं से जो है वो सर्दी आती है। तो बेसिकली नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हर चीज के अंदर अल्लाह ताला की खैर, अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई खैर या अल्लाह ताला की तरफ से पहुंची हुई जो है वो बज़ाहिर जो शर होता है तो उसको देखा करते थे, यानी हर चीज ही अल्लाह की याद दिला रही है, हर चीज ही जो है वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह कर रही है, और उसकी या तो खैर अल्लाह ताला से तलब फरमा रहे हैं या उसके शर से पनाह अल्लाह ताला से नबी अलैहिस्सलाम सलाम तलब फरमा रहे हैं। जैसे कि पिछली क्लास के अंदर भी हमने एक पॉइंट में पढ़ा था कि जब नए मौसम का फल आता था नबी अलैहिस्सलाम सलाम के पास लाया जाता था, तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम जो है वो अल्लाह ताला से उसके खैर के पहुंचने की दुआ फरमाते थे, फल आ रहा है। ठीक है ना, अब हम तो या तो हम फल आएगा तो हम ऐसे ही खा लेंगे, या अगर ज्यादा से ज्यादा हम अल्लाह को याद करेंगे भी तो क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम फल खा लेंगे। ठीक है, लेकिन उसकी उसकी खैर अल्लाह ताला से तलब करना, इतना ज्यादा हमारा ध्यान जो है वो उस चीज की गहराई में नहीं जाएगा कि ये चीज आई है तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई खैर रखी होगी, तो मैं अल्लाह ताला से मजीद खैर का जो है ना वो दुआ कर लूं, ठीक है, उसी तरह से कोई बुरी चीज है तो उसके अंदर जो शर है तो मैं उससे हिफाजत की अल्लाह ताला से दुआ करूँ। इतनी हमारी तवज्जो जो है वो नहीं जा रही होती, या इतनी गहराई में हमारी नजर नहीं जा रही होती। ठीक है, रोजमर्रा के मामलात हैं लेकिन हम उसको इस नजर से नहीं देख रहे होते। तो नबी अलैहि सलाम की उसवे हसना से हमें यह तालीम मिलती है कि हम ऐसे भी देखा करें, यानी चीजों को गहराई में देखने की कोशिश किया करें, उनको मादे के पार देखने की, मादे के पार यानी जो चीज हमें अपेरेंटली नजर आ रही है तो उसके पीछे क्या हकीकत छुपी हुई है वहां तक देखने की कोशिश करें। ठीक है, उसके लिए एक बसीरत चाहिए होती है, उसके लिए एक बसारत चाहिए होती है। हम अल्लाह ताला से बसीरत और बसारत मांगे, एक बेहतरीन और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव यानी ऑल इंक्लूसिव किस्म की एक दुआ है जो कि उलमा ने अपनी मसनून दुआओं की किताब के अंदर लिखी होती है, नबी अलैहिस्सलाम से मनकूल दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका मिन खैरी मा सअलका मिन्हु अब्दुका व नबीयुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन्हु अब्दुका नबीयुका व नबीयुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। के अल्लाह, मैं आपसे हर उस खैर का सवाल करता हूं कि जो कि आपके बंदे और आपके रसूल नबी अलैहिस्सलाम ने आपसे मांगी, और मैं हर उस शर से पनाह मांगता हूं मैं आपकी कि जिससे कि आपके बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम इस तरीके से खैरें मांगा करते थे, शर से जो है वो पनाह मांगा करते थे। तो इवन हवा चल रही है तो अब हवा के शर से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांग रहे हैं। ठीक है, कोई सवाल हो तो चैट विंडो के अंदर आप लिख करके पूछ सकती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि इमाम अहमद और हाकिम रहिमहुल्लाह ताला ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अहले बैत में से किसी के बारे में मालूम होता कि उसने एक दफा भी झूठ बोला है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक उससे नाराज रहते जब तक कि वो शख्स तौबा ना कर लेता, और जब तौबा कर लेता तो वसल्लम उससे राजी हो जाते। ठीक है, तो झूठ के बारे में हम अक्सर याद दहानियां करते रहते हैं अपने आप को और सुनने वालों को कि झूठ एक ऐसा गुनाह है कि जिससे जो है ना वो नफरत की जाती है, जिससे नफरत की जाती है तो ये अल्लाह ताला के हक की तलाफी यानी अल्लाह ताला के हक की जो है वो तलाफी, तो क्या क्या कहेंगे, हक तल्फी। ठीक है, हक तल्फी के अल्लाह ताला का हक ये है कि जैसे अल्लाह ताला ने कोई मामला दुनिया के अंदर किया है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही बयान किया जाए, उसको उससे खिलाफ करके बयान ना किया जाए। ठीक है, जब खिलाफ करके हम बयान करते हैं ना कि जी ऐसा नहीं हुआ, हालांकि अल्लाह ताला ने तो ऐसा किया था, तो इसको झूठ कहते हैं, या अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया था लेकिन हम कहते हैं नहीं ऐसा हुआ था, तो उसको झूठ कहते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का हक तलफ कर रहे होते हैं हम। सही है, और इसका जो है ना फिर बहुत ज्यादा जो है वो इंसान की जिंदगी के ऊपर और हर चीज के ऊपर असरात पड़ते हैं। झूठ से यानी रूहानी तौर पर एक बदबू भी क्रिएट होती है, बदबू के जिसको के फरिश्ते सूंघते हैं और वो फिर झूठ बोलने वाले से दूर चले जाते हैं। ठीक है, और इससे एक नहुसत फैलती है, इससे इंसान की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। इंसान की क्रेडिबिलिटी यानी उसके उसके जो ट्रस्ट वर्दनेस होती है ना कि भाई उसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है क्योंकि ये बंदा सच बोलता है। ठीक है, जब इंसान झूठ बोलता है तो सुनने वाला या जिसको भी पता चलता है कि इसने झूठ बोला है, अब उसकी निगाह में ना उसके ऊपर एतमाद नहीं रहता। ठीक है ना, अब क्या पता भाई आज इसने झूठ बोला कल भी ये झूठ बोलेगा। ठीक है ना, इस बारे में इसने झूठ बोला, अच्छा ये किसी और बारे में भी झूठ बोल सकता है, यानी इसको अपनी जुबान की परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है कि इसकी जुबान से क्या निकल रहा है। ठीक है, तो इंसान की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खराब हो जाती है और फिर उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन दूसरे गलतियां कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। एक हदीस का मफहूम बनता है ना जो कि यकीनन सबने सुनी होगी, लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, क्योंकि मोमिन तो काबिल एतमाद होता है और उसका तो मामला ही जो है वो जो गैब की बात यानी दीन की तबलीग कैसे करता है कि वो गैब की बातें बताते हैं ना लोगों को कि कि भाई अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला जो है वो देख रहे हैं और अल्लाह ताला जो है वो सजा देते हैं गलत गुनाह के ऊपर, और अल्लाह ताला जो है जजा देते हैं नेकी करने के ऊपर, तो क्या वो अल्लाह ताला को दिखा भी सकता है? किसी काफिर के पास जा करके दीन की तबलीग कर रहा है तो क्या वो अल्लाह ताला को सामने ला के दिखाएगा काफिर को कि देखो ये है अल्लाह ताला, है ये अल्लाह ताला, देखो ऐसे जो है वो जजा देते हैं, ऐसे जो है वो सजा देते हैं? क्या जन्नत और जहन्नम दिखा सकता है वो किसी हिंदू को, किसी क्रिश्चियन को, किसी यहूदी को, किसी किसी और को? नहीं दिखा सकता ना। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है काफिर से? एक मोमिन जो है वो काफिर से क्या तवक्को कर रहा है? एतमाद की तवक्को कर रहा है कि मेरे ऊपर एतमाद करो, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ अल्लाह के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, ये ऐसे ही है जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, है ना? यही करते हैं ना, एतमाद की तवक्को करते हैं आप काफिर से, ठीक है? या आप इवन किसी अपने औलाद से, औलाद को बताते हैं कि अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला जो है वो देख रहे हैं हमें, अल्लाह ताला हमें जजा देते हैं, अल्लाह ताला हमें सजा देते हैं, तो आप अपनी औलाद से क्या तवक्को कर रहे हैं? कि आप अम्मी के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आप अब्बू के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, जैसे अम्मी अब्बू बता रहे हैं वैसे ही है, राइट? लेकिन फिर उसके बाद आप जब औलाद के सामने झूठ बोलते हैं, ठीक है, और औलाद को पता चल जाता है कि ये ऐसा तो नहीं हुआ था जैसे अम्मी कह रही हैं, तो फिर क्या होगा? औलाद के दिल से अम्मी की जो है वो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, अम्मी पर एतमाद खत्म हो जाएगा। भाई अगर अम्मी इस मौके पर झूठ बोल सकती हैं तो हो सकता है अम्मी जो है वो जन्नत के बारे में भी झूठ बोल रही हूँ, ऐसी बस अपनी तरफ से ख्याली पुलाव बना बना करके मुझे बताती रहती हैं जन्नत के बारे में, और जहन्नुम के बारे में बस अपनी तरफ से जैसे भहू करके जो है वो बुड्ढा बाबा से डराते हैं, झूठ बोलते हैं ना, बुड्ढा बाबा आ जाएगा और वो जो है वो खा जाएगा और वो ये कर देगा और वो कर देगा। क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बुड्ढा बाबा नहीं आएगा, वो कभी भी नहीं आता, ना आया ना कभी आएगा, ठीक है? तो फिर ऐसी जो बातें करते हैं अपने बच्चों के सामने, तो फिर उनकी कोई कोई हैसियत, उनकी जुबान की कोई कदर नहीं रह गई, कोई हैसियत नहीं रह गई, ठीक है? इस वजह से ये जो झूठ वाला मामला है ना, ये बस खत्म कर देते हैं सारे मामले को। और जैसे कि आप जानते हैं, देखते हैं अपने अंदर भी, अगर हम झांक के देखें तो हम बेदरेग झूठ बोलते हैं, बगैर सोचे समझे हम झूठ बोलते हैं, बल्कि बिला जरूरत हम झूठ बोलते हैं। क्या मतलब बिला जरूरत? मतलब ये कि भाई कोई इंसान मजबूर हो जाए, फंस जाए किसी मसले के अंदर, और बहुत ही मजबूरन जो है वो उसकी जुबान से अपने आप को बचाने के लिए झूठ निकल जाए, तो भाई थोड़ा सा बात समझ में आती है, थोड़ा उसके लिए भी जरा दिल में नरमी पैदा होती है कि अच्छा बेचारा इतना फंस गया था, अपने आप को झूठ से नहीं बचा सका, तो इसने झूठ बोल दिया। लेकिन ऐसे ही तफरी में झूठ बोल रहे हैं, खामखा झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना, यानी जिससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, गुनाहे बेलज्जत, गुनाहे बेफायदा, यानी दुनिया का भी फायदा नहीं हो रहा, दीन का तो जाहिर फायदा नहीं हो सकता, आखिरत का तो जाहिर झूठ बोल के फायदा नहीं हो सकता, दुनिया का भी कोई फायदा नहीं है, फिर भी झूठ बोल रहा है, राइट? तो ये झूठ बोलना जो है वो हमारी घट्टी के अंदर, हमारे रग रग रेशे रेशे के अंदर सिरायत कर चुका है झूठ बोलना, और इसको हम गुनाह ही नहीं समझ रहे होते कि भाई इससे भी तौबा करनी थी, चलो जी नमाज नहीं पढ़ता ये तो गुनाह करता है तो नमाज पढ़ना चाहिए, राइट? लेकिन झूठ बोलता है इससे नहीं तौबा करनी, इसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अपने घर वालों से, अपने अहले बैत से, जिनसे के सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है इंसान को, तो उनसे जब झूठ सुनते थे ना या पता चलता था तो नाराज हो जाते थे, उससे बात करना करना छोड़ देते थे, ठीक है? लेकिन तौबा का दरवाजा खुला हुआ है तो जब वो तौबा कर लेता था तो नबी अलैहिस्सलाम उससे राजी भी हो जाया करते थे। किसी ने यहाँ पे एक मैसेज लिखा है कि जिस तरह रूहानी दुनिया में उसकी बदबू आती है, इसी तरह फिजिकल दुनिया में उसका झूठ फैलता है और लोगों पर बुरा असर पड़ता है। हाँ वो सब भी बात हो चुकी है ना, एतमाद खत्म हो गया वगैरह। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 35, के शिराजी रहमहुल्लाह ताला ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गमगीन होते तो दाढ़ी मुबारक हाथ में ले लेते थे और उसको देखते रहते, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक जो है, रीश मुबारक लंबी होती थी, ठीक है? ये जो क्या कहते हैं मुश्त भर है, ये तो मिनिमम क्वांटिटी है दाढ़ी की, ठीक है, कि उससे ज्यादा कम जो है ना वो काट नहीं सकते। ये और बात है कि किसी के चेहरे की जो जिल्द है वो ऐसी है कि दाढ़ी उगती ही नहीं उसके अंदर, जैसे कि जो चाइनीज नस्ल के लोग हैं, मलेशियन मुसलमान भी होते हैं, मलेशिया के चाइनीज हैं वो, नस्लन चाइनीज हैं लेकिन फिर बाद में मुसलमान हो गए, तो उनकी स्किन में उमूमी तौर पर देखा गया कि जी दाढ़ी नहीं उगती है, बहुत छोटे छोटे से छोटे छोटे बाल वगैरह इस तरह से उगते हैं, तो उनकी मुशबर जो है वो दाढ़ी आती ही नहीं है। तो शरीयत के अंदर दाढ़ी का मामला क्या है कि दाढ़ी जो है वो उसको छोड़ दो, उगने दो उसको, ठीक है उस अच्छा अब उसको क्या बिल्कुल भी नहीं काटो, उगती रहे हद तक वो पैर तक पहुंच जाए, नहीं बल्कि इतना उसको दुरुस्त करके रखो कि जी देखने में जो है वो बुरी ना लगे, बिल्कुल जो है वो जैसे सिखों की दाढ़ी है या जो है वो, बल्कि यहूदियों की भी दाढ़ी ऐसी नहीं होती, सिखों की दाढ़ी बहुत ही बिल्कुल गंद गंद और इस किस्म की चीज ना लगे वो, ठीक है। काट सकते हो लेकिन मुश्त से कम नहीं काट सकते, एक मुट्ठी भर से कम नहीं, क्यों, इसलिए कि एक सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक दफा जो है वो मुश्त से का रख करके फिर उतनी काट दी थी। हमारे उलमा मशायख जो है वो अक्सर मशायख मशायख तो नहीं, उलमाए कराम जो है वो अक्सर मुशबर से थोड़ी सी ज्यादा ही दाढ़ी रखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक जो है वो थोड़ी और लंबी होती थी, तो हाथ में जो है वो उसको पकड़ करके फिर उसको देखा करते थे, ये आपसे सलम की एक आदत मुबारक थी। तो अब ये हो गया, अभी आजकल तो वैसे दाढ़ी उगाना जो है वो कोई इतना बड़ा मसला रहा नहीं है, पहले जो है वो दुनिया में एक एक दुनिया को जो मुसलमानों से एक बोझ था, एक दुनिया को जो एक था ना एक तकलीफ मुसलमानों से, तो वो क्या थी जी, दाढ़ी दाढ़ी टोपी वालों से जो है ना दुनिया वालों को बड़ी तकलीफ होती थी, ठीक है ना, ये आज से ज्यादा दूर वाली बात नहीं है, बस समझ लें 15 15 साल पहले, ठीक है, दाढ़ी वाले से बड़ी तकलीफ होती थी, और जो टोपी पहनता था उससे भी तकलीफ होती थी, और कोई इमामा पहन लेता था तो वो तो बहुत ही ज्यादा फिर वो खतरनाक लोगों के अंदर उसका शुमार हो जाता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है ना वो दुनिया में एक बिल्कुल नई चीज चल पड़ी है, इस वक्त से मुराद पिछले 2 3 साल में, पिछले 2 3 साल से एक बिल्कुल यानी एक तब्दीली आ चुकी है, वो ये कि आपकी दाढ़ी पगड़ी टोपी वगैरह से कोई मसला नहीं, ठीक है ना, आप चाहे यूरोप चले जाएं दाढ़ी टोपी पगड़ी से आपको मसलन यानी काफिरों को मतलब दिल में हो मसला या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ऊपर ऊपर से कोई मसला, अमेरिका चले जाएं दाढ़ी टोपी पगड़ी कोई मसला नहीं, ठीक है, तो इस वजह से आपको अमेरिका यूरोप के अंदर बहुत दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले नजर आ जाएंगे, ठीक है, कोई ऐसा बड़ा मसला उसके अंदर अब नहीं रह गया, बल्कि उन्होंने खुद उगानी शुरू कर दी है, उन्होंने खुद उगानी, काफिरों ने यूरोपियंस ने अमेरिकन ने दाढ़ी उगानी शुरू कर दी है, ठीक है, और वो दाढ़ी भी ऐसी दाढ़ी नहीं, सिखों वाली दाढ़ी यहूदियों वाली दाढ़ी नहीं, जिस तरह मुसलमानों की दाढ़ी होती है ना वैसी दाढ़ी उगानी शुरू कर दी है, ठीक है, ये चेंज क्यों आई है, लगता है उनके दिल में मुसलमान इस्लाम आ रहा है इस वजह से चेंज आई है, नहीं इस वजह से बिल्कुल भी चेंज नहीं आई है, ठीक है ना, ये चेंज जो है ना अवामुन नास के अंदर, तो ये चेंज आई है फैशन की वजह से, ठीक है, फैशन की वजह से उनके यहाँ फैशन जो है वो हर थोड़े दिन में चेंज करके आते रहते हैं। अच्छा फैशन भी कहाँ से आता है, फैशन भी जो है ना ये कोई कुदरतन नहीं आ जाता, ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता, बल्कि फैशन लाया जाता है, फैशन लाया जाता है, जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं इनकी बाकायदा मैगजीन्स होते हैं, इनके चैनल्स होते हैं, इनके प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये जिस चीज को फैशन में लाना चाहते हैं ना वो अपने मॉडल्स के ऊपर लगा करके उसको दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, तो फैशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड, इट्स नॉट अनकंट्रोल्ड, ठीक है, कंट्रोल बकायदा कुछ लोगों के हाथ में इसका कंट्रोल होता है, वो ले करके आते हैं, ठीक है। अब इनका दाढ़ी का फैशन लाने की वजह क्या, ठीक है, या तो ये कि भाई समथिंग न्यू, कोई चीज नई लेकर के आएंगे, पुरानी चीज होती है वो लोग बोर हो जाते हैं उससे, तो एक नया फैशन लेकर के आना होता है, सिंपल से ये एक वजह भी है, ठीक है ना, लेकिन ये तो दाढ़ी का फैशन वाली बात हो गया कि भाई दाढ़ी फैशन में आ गई, हमने हम अलहमदुल्ला मतलब सफर करते हैं, मतलब अल्लाह की मर्जी भी करना पड़ता है सफर, ठीक है, तो हम ये जो तब्दीली देख रहे हैं ना ये 2013 14 से ये दाढ़ी वाली तब्दीली देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ से लेकर अमरीका यूरोप तक भी देख रहे हैं। बाकी अगर आपका सवाल दाढ़ी के मुतालिक खाली नहीं था, बल्कि आपका सवाल पिछले 2 3 साल में जो तब्दीली आई है दुनिया के अंदर उससे मुतालिक था, क्या क्या आप अगर बता सकती हैं कि आपका क्या सवाल था, आपका सवाल सिर्फ दाढ़ी के मुतालिक था या आपका सवाल जो है वो ये था कि पिछले 2 3 साल में दुनिया के अंदर एक मेजर तब्दीली आई है उससे मुतालिक था कि ये तब्दीली क्यों आई, दाढ़ी के मुतालिक था तो उसका तो जवाब आपको हमने दे दिया, ठीक है, फैशन के अंदर लेकर के आ फैशन लाया जाता है। और फैशन के लाया क्यों जाता है, दाढ़ी के मुताबिक फैशन क्यों लाया गया, उसकी एक वजह तो सिंपल समथिंग न्यू, और दूसरी वजह के मुसलमानों के बारे में जो उनके अवाम के दिल के अंदर एक खौफ था ना, उनके अवाम के दिल में जो एक मुसीबत वाला एक फितरत, यानी क्या कहते हैं, एक फीलिंग थी ऐसी, वो फीलिंग खत्म हो जाए मुसलमानों के बारे में, ठीक है ना। ये जो एक बोगज और नफरत वाली फीलिंग थी ना, ये नफरत और बोगज वाली फीलिंग खत्म हो जाए, ठीक है ना। क्यों भाई, ये एक बड़ा गहरा नुक्ता है जो कि किसी और वक्त इंशाल्लाह, ठीक है, मुसलमानों के बारे में फीलिंग और नफरत खत्म हो जाए, ठीक है ना, इस्लाम के बारे में नहीं, मुसलमानों के बारे में। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा जी, आगे चलें। पॉइंट नंबर 35, शिराजी रहमहुल्लाह ताला ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गमगीन होते तो दाढ़ी मुबारक हाथ में ले लेते थे और उसको देखते रहते थे, ठीक है। पॉइंट नंबर 36, 36 के इब्न सन्नी और नईम रहमहुल्लाह ताला ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से और अबू नईम नईम या नुईम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी ये बात नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गमगीन होते तो बकसरत दाढ़ी मुबारक को हाथ लगाते थे, ठीक है। अच्छा, वैसे शायद अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर में ये बात रखी है कि जी जब उसके ऊपर इस किस्म की कंडीशन कोई आती है ना, तो दाढ़ी अगर है उसकी तो वो ना दाढ़ी को अपने हाथ से पकड़ता है, ठीक है। तो हमने अपने जाती तजुर्बे में ये देखा, इनको कोई आवाज नहीं आ रही, मैं कैसे बताऊं कि आपको, एक मिनट, इन्होंने लिखा है आवाज नहीं आ रही, प्लीज चेक योर कंप्यूटर स्पीकर्स, एवरीवन एल्स कैन हियर। नई स्टूडेंट है कोई तो खैर, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं ना, लॉन्ग ड्राइव, तो रास्ते में कभी नींद आनी शुरू हो जाती है, तो कुदरतन जो है ना, बगैर सोचे समझे ऐसा बस अपना हाथ जो है वो दाढ़ी के ऊपर चला जाता है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि जैसे दाढ़ी को पकड़ने से जो है वो नींद जो है वो खत्म हो जाएगी। अब जाहिर ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी हाईवे के ऊपर, अमूमन रात का वक्त होता है जब ज्यादा नींद आ रही होती है, तो पता नहीं दाढ़ी पकड़ने से जो है वो ऐसा लग शायद, यानी लेकिन सोचे समझे बगैर बस हाथ जो है वो दाढ़ी पे पहुंच जाता है, ठीक है, अल्लाह वालम। अच्छा, पॉइंट नंबर 37, इमाम अहमद रहमहुल्लाह ताला ने हजरत उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुरमा लगाते तो ताक अदद से सिलाई आंखों में फेरते थे। ताक अदद यानी ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह। दूसरी हदीस में जिसको तिरमिजी वगैरह ने रिवायत किया है, ये बात है कि हर आंख में तीन तीन सिलाई सुरमा लगाते थे, ठीक है। तो तीन का आदत जो है, वैसे भी नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिपीट बातों को भी तीन तीन दफा रिपीट किया करते थे, कोई अहम बात होती थी उसको, और इस तरह के अफआल के अंदर भी, जैसे सुरमा लगाना वाला एक फेल है तो उसमें भी तीन तीन सिलाई, ठीक है। तो हमने अपने मशायख से हदीस मुबारक बाकायदा सुनी कि अल्लाह वितरुन व युहिब्बुल वितरा, कि अल्लाह ताला जो है ना वो एक है, वितर से मुराद भी है वो एक यहाँ पर, और व युहिब्बुल वितरा दूसरे मिसरे के अंदर वितर से मुराद यही जिसको जुफ्त कहते हैं, ताक और जुफ्त नहीं, ताक ताक जो है वो हम उर्दू जुबान में ताक का लफ्ज जो है वो वितर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑड नंबर्स अंग्रेजी में जिसको कहते हैं। तो ऑड नंबर्स जो है वो अल्लाह ताला को पसंद हैं, तो और क्योंकि अल्लाह ताला का खुद भी जो है वो वाहिद है, और वाहिद जो है वो ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर में आता है वितर में, ठीक है। तो फिर जो है ना वो हर चीज के अंदर फिर ऑड नंबर्स का जो है वो एहतमाम किया करते थे, यानी पहले दाएं आंख में 3 मरतबा, फिर बाएं आंख में 3 दफा लगाते थे। जी क्योंकि अच्छी चीजें जो है वो हमेशा दाएं तरफ से शुरू करते थे, और जुर्मा लगाना तो अच्छी अच्छी चीज है, उसके दाएं तरफ से शुरू करके फिर बाएं तरफ। अच्छा, फिर पॉइंट नंबर 38 के मुस्लिम और इमाम अहमद रहमहुल्लाह ताला ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन से रिवायत किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते तो अपनी उन तीन उंगलियों को जिनसे आप खाया करते थे चाट लिया करते थे। ठीक है, तो तीन उंगलियों से यानी इसको अंगूठा और तशहुद वाली उंगली और उसके बराबर वाली जो सबसे बड़ी उंगली होती है, तो इन तीनों उंगलियों को इस्तेमाल करके खाना खाया करते थे। और यही जो तरीका था, ये कुरैश का तरीका मशहूर था। हत्ता कि एक दफा हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह इमाम गालिबन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के पास पहुंचे, क्योंकि वो फिर वहां पे इल्म हासिल करने के लिए गए थे गालिबन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के पास। तो जब खाना पेश किया गया तो उन्होंने तीन उंगलियों से खाना शुरू किया, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह पहचान गए, कहना कि क्या तुम कुरैश में से हो, यानी तीन उंगलियों से खाना देख खाता देख करके पहचान गए कि अच्छा आप कुरैश में से हैं, कुरैश ऐसे खाना खाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में चावल जो है नहीं होता था अरब के अंदर, सहाबा के जमाने में चावल जो है ना वो आया है। तो रोटी और इस तरह की जो ड्राई चीजें होती हैं वो आप तीन उंगलियों से आसानी के साथ खा सकते हैं, चावल को तीन उंगलियों से खाना जो है ना ये आसान काम नहीं है, तो चार उंगलियां उसके अंदर शामिल हो ही जाती हैं, और अगर पांचवी उंगली भी जो है वो उसको हैंडल करने के लिए शामिल करनी पड़े तो उसमें मुजायका नहीं है। ठीक है, स्पेगेटी इस टाइप की कोई डिश हो तो वो तो इस तरह वो टोंग से खाते हैं, यानी क्या कहते हैं उसको, स्टिक से खाई जा रही होती है, तो वो अब हम जैसे लोग तो ट्राई करते रहते हैं, हमसे वो स्पेगेटी उठती भी नहीं है, कुछ लोग तो चावल भी जो है वो उन स्टिक से खा लेते हैं, लेकिन आमतौर पर अच्छा। बहरहाल तीन उंगलियों से खाएं तो सुन्नत की नियत से खाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना चार पांच उंगलियां भी लगाई जा सकती हैं। बस इस तरह से बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता कि जैसे कुछ लोग जो चावल है ना वो जैसे मुट्ठी में चावल को पकड़ करके फिर उसके बाद जो है ना वो मुंह मुंह के अंदर उंडेल रहे होते हैं, अपनी मुट्ठी को मुंह में उंडेल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब उनके कल्चर के अंदर अगर ये तरीका यही है तो फिर ठीक है उनका कल्चर है मतलब, लेकिन आमतौर पर जो है वो लोग इस तरह से खाते नहीं है, और ये बहुत ही यानी एक खराब तहजीब वाला तरीका लगता है। तो उंगलियों से अब बच्चों को भी जाहिर है ये चीज सिखाते हैं, तो फिर बच्चे फिर सही तरीके से खाना शुरू कर देते हैं। राइस वगैरह स्पून से खा सकते हैं या फिंगर से खाना चाहिए? राइस वगैरह स्पून से खा सकते हैं तो देखें खा तो सकते हैं, इसमें ये कोई हराम नहीं है, हत्ता के मकरूह तहरीमी वगैरह इस तरह की भी कोई चीज नहीं है कि आप चमचे से खा रहे हो। ठीक है, अगर इसके अंदर तशाबुह बिल्कुफार ना, तशाबुह बिल्कुफार का मतलब ये होता है कि तशाबुह जिसके जिसके लिए वईद आई है हदीस मुबारक है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हु, जिसने किसी कौम के साथ तशाबुह इख्तियार किया बस वो उसी कौम में से है, यानी उसका कयामत के दिन हशर जो है ना वो उसी कौम के साथ हो, यानी ईमान पर मौत इसको नहीं आएगी, इसको ईमान पर मौत नहीं आएगी, क्योंकि कयामत के अंदर किसी दूसरी कौम के साथ हशर होने का मतलब क्या है कि मौत के वक्त ये ईमान से महरूम कर दिया गया था, अगर ईमान से महरूम नहीं किया गया तो फिर कयामत के दिन इसका मुसलमानों के साथ ही हशर होगा। ठीक है, तो तशाबुह का मतलब क्या होता है जिसके ऊपर इतनी सख्त वईद आई है हदीस मुबारक के अंदर? तशाबुह का मतलब ये होता है कि आप किसी गैर मुस्लिम कौम को काबिल तकलीद समझें और उनके जैसे अफाल करें, यानी उनकी इज्जत और अजमत आपके दिल के अंदर हो और इस इज्जत और अजमत की वजह से आप उनकी कोई कॉपी करें किसी चीज के अंदर, इज्जत और अजमत की वजह से। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके दिल में इज्जत अजमत नहीं है और आप जो है उनकी जैसी कोई कोई फेल कर रहे हैं लेकिन दिल के अंदर उनकी इज्जत और अजमत वाला मामला नहीं है, तो ये फेल तशाबुह नहीं कहलाएगा, मुशाबहत कहलाएगा। मुशाबहत एक अलग लफ्ज है, ठीक है, उसका उसका मफहूम थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुशाबहत हो गई भाई, मुझे उसके साथ मुशाबहत हो गई, अच्छा ये उससे बड़ा मुशाबे लगता है कि जानबूझ के कोई थोड़ी मुशाबहत कर रहा है, बस हो गई, मुशाबहत का मसला नहीं है कि किसी ने जैसे हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहु ने इसी नुक्ते को काफी यानी लिखा है, वहीं से आजिज भी आपको वहीं से रेफर कर रहा है, मैं तो वहीं से आपको कोट कर रहा है उनकी बात से कि मुशाबहत हो गई भी, जैसे गुजराती लोग हैं हमारे यहाँ वो पतलून पहनते हैं, ठीक है, तो पतलून वो कोई काफिरों की जैसे यानी उनकी उनके तशाबों की वजह से वो पतलून नहीं पहन रहे होते, पैंट ही पहन रहे होते, बल्कि उनके कल्चर के अंदर ये चीज है, इसी तरह से उनका है, तो वो तशाबों में नहीं है। ठीक है, तो स्पून वगैरह से कांटे से खाना, ठीक है, जैसे अल्लाह ताला हमारे हालात पे रहम फरमाए, माफ फरमाए, ठीक है ना, के बाकायदा बच्चों को सिखाया जाता है कि जी जो जो चमचा और कांटा जो होता है ना, उससे आपने कैसे खाना है, ठीक है ना, तो वो बाकायदा। अच्छा, तशाबो जब बंदा करता है ना, तो फिर उसके अंदर वो शरीयत के भी जाहिर उसको ख्याल नहीं रहता, तो वो काफिर जिस तरीके से कांटे और छुरी से खाते हैं ना, तो वो तरीका ये होता है कि छुरी को जो है ना वो सीधे हाथ में पकड़ते हैं, और कांटे को जो है वो उल्टे हाथ में पकड़ते हैं, और फिर सीधे हाथ में छुरी से जो है वो चीज को काटा जाता है, और फिर कांटे से उठा करके उसको खाया जाता है उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से, ठीक है। और आपको पता है ना, इस्लामी जमहूरी है पाकिस्तान के अंदर जितने ये एकेडमीज होती हैं, और वहां पर जो है ना वो छुरी कांटे से सिखाया जाता है, उसके बगैर कोई खा नहीं सकता। और वो कौन सा तरीका सिखाया जाता है, वो शरीयत वाला तरीका नहीं सिखाया जाता कि भाई सीधे हाथ से खाना, उल्टे हाथ से खाना, बाएं हाथ से, ठीक है। तो ये तशाबों में आता है, तशाब, ठीक है। और अगर तशाबो नहीं है तो आप जो है ना वो एक दो चमचे कांटे से खा सकते हैं किसी चीज को, उसकी रीजंस क्या होती हैं कि जिसकी वजह से दीनदार उलमा मशायख चमचे कांटे से खा लेते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह ये होती है कि हाथ धोने का मौका नहीं होता, ठीक है ना, हाथ जो है वो साफ नहीं है, और यानी आप गंदे हाथ से जो है वो खाना खाएंगे तो जरासीम हो जाएंगे, और ये वैसे भी सुन्नत के भी खिलाफ है ये बात, ठीक है। तो इस वजह से एक तो खा लेते हैं, दूसरी ये कि जो जो वेट चीजें होती हैं यानी बहुत ही ज्यादा जिनके अंदर जो है वो इस वो हाथ से उठाना जो है ना वो उससे काफी ज्यादा एक मुश्किल भी हो जाती है, जैसे दाल चावल, ठीक है। अब चावल तो आप हाथ से आराम से उठा सकते हैं, लेकिन जब वो दाल के अंदर जरा ज्यादा मिक्स हो जाए, तो अब आप हाथ से उठाना उस यानी फिर बहुत यानी एक गंद गंद भी फैलती है, देखने में भी बुरा लगता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है वो आप फिर इस तरह की चीजें जो है वो चम्मच से खा सकते हैं। सूप वगैरह तो वैसे भी चंद चम्मच के बगैर नहीं पिया जा सकता। क्या आपने लिखा, बेटे को कुकिंग क्लास में ये बता रहे हैं, फिर उसे बताया कि ये खिलाफ सुन्नत है, फिर उसे, अच्छा, कुकिंग क्लास, बेटी को कुकिंग क्लास में ये बता रहे हैं कि ऐसे खाना चाहिए, जी ठीक है, बस वही, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और हमें तौबा की तौफीक अता फरमा दे। ठीक है, हमारे जो हालात है ना, जो इस वक्त पहुंचे हुए पाकिस्तान के, खुसूसन खुसूसन पाकिस्तान के, ठीक है ना, तो उसके इन हालात को देख के, जो कि इस वक्त हमारी जो कमर तोड़ वाला जो एक मसला आया है ना, कमर तोड़ महंगाई, जिसके ऊपर बाकायदा बयान हो रहे हैं हमारे हजरत पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी बरकातुहुम ने जुमे के दिन बयान किया ना, ठीक है ना, जिसने सुना होगा उसको पता है कि क्या, कि भाई खुदकुशी ना करें, हमारे पास आए, हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपके घर पे राशन पहुंचाएंगे। क्या मतलब कि लोगों की खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, ठीक है ना, पहले भी लोग खुदकुशी कर रहे थे लेकिन अब वो बढ़ गई हैं। ये खुदकुशी का जो एक फिनोमेना है, ये पाकिस्तान के अंदर 2010 के बाद जो है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ा है ये, ठीक है, और अब जो है ना वो और ज्यादा। कल ही जो है साजिश के पास एक और किसी ने फ्लायर भेजा, कराची के अंदर कोई इसी तरह की कोई ह्यूमैनिटी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपना इश्तेहार बनाया कि भाई कराची की कोई फैमिली खुदकुशी ना करे महंगाई की वजह से, कराची की कोई फैमिली में, अच्छा, फैमिली खुदकुशी ना करे, क्या क्या मतलब है इसका, कि शायद उनके पास, मेरा गुमान है कि उनके पास खबरें पहुंची होंगी कि पूरी की पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली, एक बंदे ने नहीं, पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली। दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन ये कराची में पाकिस्तान के अंदर ये शुरू हुआ है, तो वो हमारे पास आए, हमें हमें कांटेक्ट करें, हम उनको राशन पहुंचाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो है ना, जो जो थोड़ा गरीब तबके के लोग होते हैं, जो कि भीख भी मांग लेते हैं, दूसरों के पास भी चले जाते हैं, है ना, वहां पर ये तो नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनको जो है वो लंगर पे खाना मिल रहा होता है, लेकिन जो सफेद पोश लोग होते हैं ना, वो किसी से मांगते हुए जो है ना उनको बड़ा तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, वो नहीं मांगते, तो फिर वो खुदकुशी कर लेते हैं। दीनदारी तो नहीं होती, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक नहीं होता, ठीक है ना, ना जो है वो गुनाहों से जो है वो तौबा की कोई कोई किस तरफ कोई तवज्जो होती है कि भाई अल्लाह ताला रिज़्क देने वाले हैं और हमारे गुनाहों की वजह से है, तो अब हम गुनाहों से तौबा करके अल्लाह ताला से जुड़ते हैं, अल्लाह ताला जो है वो बकदर जरूरत हम तक रिज़्क पहुंचा देंगे, ये सारी फिक्रें ये सारी सोच तो बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या होता है, शैतान जो है वो फिर मायूसियां पैदा करता है, और मायूसी बढ़ते बढ़ते बिलाखिर खुदकुशी की शक्ल अख्तियार कर जाती है। तो हम इस नहज तक पहुंचे हैं तो किसी वजह से पहुंचे हैं ना, ऐसी पहुंच गए अल्लाह ताला, नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला, अल्लाह ताला को मजा आ रहा है हमें इस हालत तक पहुंचा करके। होता है ना किसी शख्स को जो है वो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लोगों को अजियत पहुंचा के मजा आता है, हंसते हैं, ओ ये इसको तकलीफ और तकलीफ दो, वो तकलीफ से चिल्ला रहा है, ये हंस रहा है, इसको खुशी हो रही है। क्या हमारा अल्लाह ऐसा है, क्या हमारा परवरदिगार ऐसा है कि कराची वालों को अजियत पहुंचा के और पाकिस्तान वालों को अजियत पहुंचा के अल्लाह ताला जो है वो अपने फरिश्तों में बैठ करके जो है वो हंस रहे होंगे इस वक्त? क्या ऐसा ही अल्लाह है हमारा? हमने यही समझा है अपने अल्लाह को? हरगिज हरगिज अल्लाह ताला ऐसा नहीं है ना। जब हम इन चीजों को ना अल्लाह ताला से अलग कर देते हैं ना, दीन से अलग कर देते हैं, तो हम यही कह रहे होते हैं, यही असल में होता है कि भाई अल्लाह ताला, भाई अल्लाह ताला ही हर चीज के पीछे है ना, तो ये क्या है अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह ज़ालिम है क्या? नहीं, ये हम खुद जालिम हैं, और कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हम पर उतार करके हम पर हुज्जत तमाम कर दी है, क्योंकि ये सारे उसूल अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में हमें बता दिए हैं कि अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता, ये खुद अपनी जानों के ऊपर जुल्म करते हैं, ठीक है। अगर कुरान मजीद ना होता, नबी अलैहिस्सलाम हमें कुरान मजीद ना देते ना, तो फिर लोग सोचते कि पता नहीं अल्लाह ताला क्या करते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला जो है वो क्यों कर रहे हैं सबको, जैसे कि काफिर ऐसे ही सोचते हैं, व्हाई डिड गॉड डू दिस, बिकॉज दे डोंट हैव कुरान। काफिरों के पास कुरान नहीं है, हमारे पास तो कुरान है ना, और हम मानते भी है ना इस कुरान को, तो कुरान मजीद में सारे जवाब मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते, क्यों करते हैं उसकी वजह, अगर करते हैं तो क्यों, मतलब ये जुल्म जो, ये इनकी अपनी जानों का जुल्म है। और अल्लाह ताला उसी कुरान मजीद के अंदर हमें ये भी उसूल बता देते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना वइन्नल्लाह लमा अल मुहसिनी, ठीक है, कि जो हमारे रास्ते में कुछ करता है ना, हम अपने तक पहुंचने के रास्ते उसके लिए हमवार कर देते हैं, यानी मरने के रास्ते हमवार कर देते हैं उसके लिए। नहीं, हमारे जो खजाने हैं, हमारी जो नेमतें हैं, बातनी नेमतें, रूहानी नेमतें, मादी नेमतें, उन नेमतों तक पहुंचने के लिए हम आसान कर देते हैं उसके रास्ते, और हम तो नेकी करने वालों के साथ होते हैं, मईयत में होते हैं उनकी, वो हमारी मईयत में होते हैं, हम उनकी मईयत में होते हैं, फिर खुदकुशियां कहाँ है, कहाँ से आ गई, हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो हम जो है ना, ये जो दीन की मेहनतें भी अगर कर रहे हैं ना, बहुत सारे अकाबरीन को छोड़ करके, उनकी बात हम नहीं कर रहे, बड़ों की बेअदबी हरगिज हरगिज नहीं, वो अपना काम बिल्कुल सही से कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो है ना, जो दीन की मेहनतें हैं ना, वो भी जो है ना, वो ऐसे ही मामला है कि जिसके लिए के शायर ने कहा, दर्द बढ़ता गया जू जू दवा की, दर्द बढ़ता गया जू जू दवा की। क्या मतलब है इसका, कि भाई जिस दवा को आपने हल करने के लिए जो है, जिस दर्द को दूर करने के लिए आप दवा कर रहे थे, वो दर्द तो बढ़ता गया जैसे जैसे आप दवा कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप दवा सही नहीं कर रहे, आप दवा सही नहीं कर रहे, आप दर्द किसी और दवा से दूर होना था, आप जो है वो कुछ और दवा खा रहे हैं, या दवा की जो मिकदार आपको चाहिए थी वो मिकदार आप पूरी नहीं खा रहे, राइट, है था ना, वो एंटीबायोटिक की जो है ना, वो जितनी प्रिस्क्राइब क्वांटिटी होती है उतनी खानी होती है, और जितना स्केड्यूल होता है उसके हिसाब से खाना होता है, तब कहीं जो है वो आपका इन्फेक्शन दूर होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं खाएं दवा को, तो फिर इन्फेक्शन दूर नहीं होगा, बल्कि इन्फेक्शन बढ़ जाएगा ना। तो ये जो खुदकुशी का इन्फेक्शन, मायूसी का इन्फेक्शन जो बढ़ रहा है पूरे मुआशरे के अंदर, इल्ला माशा, बज़ाहिर इल्ला माशाल्लाह का मतलब क्या, कि जो जो दर्द, जो दवा सही तरह से कर रहे हैं उनका दर्द नहीं बढ़ रहा, लेकिन बाकी मुआशरा जो है वो दवा नहीं कर रहा। हालांकि दीन तो इतना हवाएं फैल चल चुकी हैं, हर बंदा दीन की बात कर रहा होता है, हत्ता के दीन जो है वो आपके स्कूल के अंदर दीन इतना ज्यादा पढ़ाया जा रहा है जितना हमारे बचपन में इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था, जितना दीन जो है वो स्कूलों में अब पढ़ाया जा रहा होता है, और जितना दीन टीवी के ऊपर, हम जब बच्चे थे छोटे थे तो टीवी के ऊपर जो दीन था ना वो जियाउल हक के जमाने में आना शुरू हुआ था, ज्यादा से ज्यादा नाते होती थी और बस, कुछ और कुछ नहीं होता, या तो वो नमाज का जो है वो इशा की अजान हो जाती थी, उससे पहले उतना भी दीन नहीं होता था। अब तो टीवी के ऊपर बे इंतहा दीन होता है, तो दीन तो हर तरफ मौजूद है, तो फिर भाई दर्द क्यों नहीं खत्म हो रहा, बढ़ क्यों रहा है ये दर्द, ये दर्द बढ़ क्यों रहा है? ठीक है, तो हम जो जो दीन दीन पिट्टू पिट्टू की तरह से खेल रहे हैं ना, जिस तरह पिट्टू पिट्टू बच्चे बच्चा खेल रहा होता है, मैं बचपन में खेल रहा होता था, उसी तरह हम दीन दीन खेल रहे हैं। ठीक है, तो हम ये सही नहीं कर रहे, हम ये सही नहीं कर रहे, हम बहुत मेजर किस्म की मिस्टेक्स कर रहे हैं जो कि जिसकी वजह से इस दीन से फायदा नहीं हो रहा और जो है वो दर्द बढ़ता चला जा रहा है। मेजर मिस्टेक्स क्या होती हैं, मेजर मिस्टेक, अब क्या मेजर मिस्टेक कर रहे हैं भाई, सहाबा कराम का तरीका ये दीन का तरीका है राइट, और हमने जो है ना वो उसको बिल्कुल अपना एक नया तरीका बनाया है दीन का। बहरहाल अब जाहिर पूरा तो नहीं, आपको इस वक्त टाइम भी खत्म हो गया इस पर क्लास का, तो तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत अबू हुरैरा से रवायत किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई दुश्वारी पेश आती तो सर मुबारक को आसमान की तरफ उठाकर सुबहानल्लाहिल अजीम पढ़ते, सुबहानल्लाहिल अजीम पढ़ते। ठीक है, ये पेज फिर मुकम्मल कर लेते हैं, फिर अगली क्लास शुरू करते हैं। पेज नंबर 40, सॉरी पॉइंट नंबर 40। अबू दाऊद और इब्ने माजा रहमहुमुल्लाह ताला ने हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को किसी काम के लिए भेजते तो फरमा देते कि लोगों को खुशखबरी सुनाया करो, उनको नफरत ना दिलाओ, आसानी करो सख्ती ना करो। ठीक है, लोगों को खुशखबरी सुनाया करो, उनको नफरत ना दिलाओ, आसानी करो सख्ती ना करो। ठीक है, ये हदीस मुबारका के अंदर इसके अल्फाज जो हैं, यस्सरू वला तुअस्सरू, ठीक है, आसानी पैदा करो तुअस्सरू यानी उसरत, और यानी सख्ती ना ना करो, वबश्शिरू वला तुनफ्फिरू, ठीक है, और लोगों को बशारत दो और उनको जो है मुतनफ़िर ना करो। ठीक है, अभी 2 मिनट पहले हम क्या कर रहे थे, 2 मिनट पहले जो है वो बड़ी मनफी, ओहो हम तो सही दवाई नहीं कर रहे हैं और मर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली हदीस कोई किताब से पढ़ेगा और फिर इस फकीर का जो है वो 2 मिनट पहले का बयान सुनेगा, इनको तो पता ही कुछ नहीं राइट, इनको तो सुनना तरीका ही नहीं पता कि क्या करना चाहिए था, बशिरू वला तुनफिरू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और ये तो जो है तुनफिर ही करते रहते हैं, मुतनफिर ही करते रहते हैं हर वक्त, है ना, हर वक्त जो है ना वो सख्ती दिलाते रहते हैं। तो भाई सख्ती दिला रहे हैं, हमने कोई सख्ती, ये खुदकुशियां जो हो रही हैं, ये जो हर बंदा परेशान है, जो मुझे परसों जो है वो हमारे बच्चों के जो उस्ताद साहब आते हैं फरमाने लगे कि जी मैंने अपने भाई से पूछा कि खर्चा कितना कितना हो रहा है घर का, तो कहने लगा कि मैं जितना सामान अपने घर की ग्रोसरी का जो है ना वो 12,000 रुपए में लेकर के आता था ना, 12-13 हजार में, अब वही सामान मैं 60-70 हजार रुपए में लेकर के आता, जो 12,000 में लेकर के आता था वही सामान मैं 60-70 हजार रुपए में लेकर के आता। ठीक है, तो ये जो 60-70 हजार बन गए थे, यानी तीन गुना तो हो गया ना, ये 12 3 3 48, 12 5 हजार कितना होता है, 5 गुना। ठीक है ना, 5 गुना जो आपकी बढ़ गई है, तो आमदनी इस हिसाब से बढ़ी है, तो भाई ये क्या मौलवी साहब ने महंगाई करवाई है कि मौलवी साहब जो है ना वो मौलाना साहब जो है ना वो तनफिरु तनफिरु कर रहे हैं और तोअसरु कर रहे हैं, इस वजह से महंगाई बढ़ गई है? मौलवी साहब ये इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं, मौलवी साहब जो है वो स्टेट बैंक को कंट्रोल कर रहे हैं, मौलवी साहब जो है वो IMF के साथ जो है वो एग्रीमेंट्स बना रहे हैं राइट, मौलवी साहब तो एक मौलवी साहब हैं, वो भी जो है ना वो यानी वो खुद तो नहीं बना रहे होते। ठीक है, वो तो मना कर रहे हैं लेकिन वो भी ना उनकी बात किसी ने सुना, ना उनकी बात पहले सुनी, ना उनकी बात जो है वो आज सुन रहे हैं, और ना आइंदा कोई कोई नजर आता है कि उनकी बात सुनेंगे। ठीक है, तो भाई जब इस तरह से बेड़ा गर्क करके हालात आपके खराब हो रहे हैं, तो मौलवी साहब तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अल्लाह के बंदे तौबा कर लो, राइट। तो वो अगर वो तौबा करने के लिए कह रहे हैं ताकि तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएं, क्योंकि क्योंकि अल्लाह ने यही वादा किया हुआ है ना, गुनाहों के जरिए से हालात अच्छे नहीं हो सकते, तौबा के जरिए से हालात अच्छे हो सकते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो अश्रु कहेंगे, ओहो इतना मुश्किल काम कह रहे हैं करने के लिए, तौबा, इतना मुश्किल काम ये तो मैं नहीं कर सकता। तो इस वजह से ना नबी अलैहि सल्लम ने तो फरमाया था बशिरू और यस्सिरू, और ये जो है ना वो तो अश्रु करने को कह रहे हैं, हालांकि नबी अलैहि सल्लम फरमाया था ला तो अश्रु, मुश्किल ना बनाओ, और ये जो है मुश्किल काम करने के लिए कह रहे हैं, गुनाह छोड़ने के लिए, राइट। ये तो गुनाह छोड़ने के लिए कह रहे हैं, जिससे ज्यादा मुश्किल काम मेरे लिए कोई है ही नहीं, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ला तो असरु, मुश्किल मत कहो। बात समझ आ रही है? मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरा अपना कसूर है। ठीक है, तो ला तो असरु का मतलब क्या कि तौबा करने के लिए मत कहना किसी को, गुनाह छोड़ने के लिए मत कहना किसी को, बस ये कहना कि सब चलता है, सब ठीक है, जो भी करोगे अल्लाह ताला जो है ना वो रहीम है करीम है, और अल्लाह ताला जो है ना वो तुम्हें मायूस नहीं होने देंगे, फिक्र ना करो, अल्लाह ताला तुम्हें मायूस नहीं होने देंगे, अल्लाह ताला तुम्हें खुदकुशी करने नहीं देंगे, फरिश्ता भेज देंगे जो कि खुदकुशी करने वाले का हाथ पकड़ लेगा। ठीक है ना, मौलवी साहब को ये बात करनी चाहिए थी, ये वो करते नहीं है, राइट। ठीक है, गुनाह पहले भी हो रहे थे हजरत, इतने बुरे हालात किस गुनाह की सजा है? बड़ा मजे का सवाल किया आपने, गुनाह तो पहले भी हो रहे थे, ठीक है ना, इतने बुरे हालात किस गुनाह की सजा है? ये तो भाई इसका जवाब जो है ना वो तो डांट से मिलता है, ठीक है, क्योंकि सवाल ही आपका ऐसा है कि जैसे कि आप आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं नहीं अभी आपने ज्वाइन किया है, स्लिपरी स्लोप कितने सालों पहले बात करी थी और आपने यकीनन वो सुनी थी, स्लिपरी स्लोप, ठीक है, कि जब इंसान गुनाह करता है ना तो वो स्लोप पे नीचे उतरना शुरू कर देता है, ठीक है, और जैसे जैसे वो नीचे उतरता है ना स्लोप पे, उसकी स्पीड बढ़ती है, एक्सेलरेशन बढ़ती है, ठीक है, उसकी यानी, तो अब जब हम गुनाह के स्लोप पे नीचे जा रहे हैं और कई सालों से जा रहे हैं, बहुत पहले से जा रहे हैं, ठीक है ना, तो भाई जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना, और स्पीड बढ़ने का मतलब गुनाह के ढलवान के ऊपर स्पीड बढ़ने का मतलब क्या कि गुनाह का जो नहूसत है वो भी बढ़ रही है, हम गुनाह की गहराई में चले जा रहे हैं, जाते चले जा रहे हैं, जाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो हर गुनाह के साथ सजा चिपकी हुई है और हम जो है वो नीचे, तो वो सजाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और इसी तरह इन्होंने दूसरी ने आप की तरह के एक और हैं, स्नोबॉल इफेक्ट से समझाया था इसी बात को, स्लिपरी स्लोप से भी समझाया था और स्नोबॉल इफेक्ट से भी समझाया था, जब स्नोबॉल ऊपर से चोटी से जो है वो नीचे लुढ़कना शुरू करती है तो वो बहुत छोटी सी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जाती चली जाती है उसके ऊपर स्नो एक्यूमुलेट होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, वो स्नोबॉल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, पहले छोटी सी थी उसको रोकना बड़ा आसान था, कोई आकर के रोक लेता अपने हाथ से रोक सकता था, अब वो स्नोबॉल बन चुकी है इतनी बड़ी, अब वो किसी चीज के सामने नहीं रुकती, हत्ता कि घरों को जो है वो मिसमार करके जो है वो नीचे चली जाएगी, गुनाह का एग्जैक्टली यही हाल है, ठीक है, तो इतने सालों से कर रहे थे अब कौन सा हमने नया गुनाह कर लिया जिसकी वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई, वो भाई क्योंकि स्नोबॉल, और एक और भी इसकी वजह है, एक और भी इसकी वजह है, वो क्या कि इतने सालों से जो हम गुनाह कर रहे थे ना उस गुनाह में और आज के गुनाह में एक बड़ा मेजर फर्क है, वो फर्क अगर आप में से कोई बता दे, ठीक है, हम एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं लेकिन मकसद तो हमारा तरबियती क्लास करने का ही है ना, तो मिसाली बीवी में से हम थोड़ा सा टाइम इसमें इसमें ले लेते हैं, ये चलें सबसे माशाल्लाह काफी और लोग भी आ गए, तो पहले भी हम गुनाह करते थे अब भी हम गुनाह कर रहे हैं, एक तो स्नोबॉल इफेक्ट हो गया और जो है स्लिपरी स्लोप वाला फिनोमिना हो गया, लेकिन एक और भी बहुत बड़ा फर्क है, पहले के गुनाहों में और आज के गुनाहों में, वो क्या है? जी एग्जैक्टली, गुनाह को अब गुनाह नहीं समझते हम, गुनाह को अब गुनाह नहीं समझ रहे। पहले हम गुनाह करते थे उसको गुनाह समझ रहे होते थे, तो फिर भी एक नदामत होती है, एक एहसास होता है इंसान को, ठीक है ना। दीन को तो तब्दील नहीं किया ना, गुनाह कर रहा है, गलत काम किया, अपना अमल खराब है, दीन को तो नहीं तब्दील कर रहा ना, कि कह रहा है कि नहीं दीन में तो ये गुनाह है ही नहीं, ये तो नेकी होती है। अब क्या हाल हुआ वह, अब जो है ना वो बिल्कुल तारीफ बदल दी गई है और मजीद बदली चली जा रही है, कि अब गुनाह को नेकी बना करके पेश किया गया और लोगों ने उसको कबूल कर लिया है, लोगों ने कबूल कर लिया है कि हाँ ये गुनाह नहीं है, ये तो नेकी है जो कि हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, अब जो है वो मुसलमान कुफर में दाखिल हो रहे हैं, कुफर के अंदर, क्योंकि दीन बदलना मीन्स कुफर, ईमान खत्म हो रहा है और कुफर जो है वो मुसलमानों के अंदर फैल रहा है, ठीक है। दीन को आप तब्दील कर रहे हैं जो कि अल्लाह का दीन था, तो इस गुनाह में और आज से 30 साल पुराने गुनाह के अंदर, हालांकि उस वक्त डांस और म्यूजिक और शराब शायद हमें ज्यादा नजर आता, आज भी शायद बहुत ज्यादा, कोई कमी तो नहीं हुई है उसके अंदर, लेकिन वो गुनाह को गुनाह समझ के किया जा रहा होता था, और अब जो है ना इन चीजों को नेकी समझ करके, या ये कि नहीं, कोई भी गुनाह को थोड़ी है, ठीक है, बल्कि सवाब भी समझ करके कर रहा है, कर रहे हैं, ठीक है। तो दीन के साथ इस तरह का मजाक करना, या दीन के साथ जो है वो इस तरह से तब्दीली लाने की कोशिश करना, ये अनएक्सेप्टेबल है, अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। और उसके ऊपर जो है ना फिर बड़ी पकड़ आ जाती है, बड़ी पकड़, वरना छोटी पकड़ आती है, इसके साथ बड़ी पकड़ आती है, ठीक है। अल्लाह ताला से हम रहमत की दुआ करते हैं, माफी की दुआ करते हैं, हम औरतें इस सुन्नत पर अमल किए बगैर आसमान आसमान देखे, छत देखकर सुभान अल्लाह पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह ताला से जो है ना वो बगैर ऊपर देखे भी दुआ कर सकते हैं, सुभान अल्लाह, सुन्नत पर अमल आप छत देखे, ठीक है। आजकल तो मर्दों को छत देखनी नसीब नहीं होती, आप औरतों की बात करते हैं, चले अब ये बात जो है वो फिर किसी दूसरे रुख पे चली जाएगी, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक 2 मिनट